लो, जयदयाल जी गोविंद का महाराज की पुस्तक है, पहले तो निवेदन पढ़ लो, फिर उसके बाद में पहले शुरू से शुरू करते हैं।
निवेदन। जैसे दो वर्ष के बालक के माँ बाप मर जाएं, वह माँ बाप के मरने के तत्व को नहीं समझता, वह हंसता फिरता है, उसे भावी का पता नहीं कि उसके ऊपर कितना कष्ट आ गया और उसको भविष्य में कितने कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। इसी तरह संसार में आसक्त मनुष्यों की दशा है, उन्हें पता ही नहीं कि यदि इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं की तो हमें कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। समुद्र की लहरों की गणना भले ही संभव हो, परंतु मनुष्य को कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाकर कितना महान कष्ट भोगना पड़ सकता है, इसकी उसको सुधी नहीं है।
बिल्कुल 100% ही ऐसा ही है जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए होगा तो वो जो भगवान की कृपा का विधान है, लेकिन अपनी तरफ से पक्का ही कर लो, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात मानो इस बात को कि भाई इसी जन्म में होना चाहिए, ठीक है नहीं? जितना जितना अपना समय शक्ति है सामर्थ्य है कर्तव्य करते हुए इसमें लगाना और रात दिन प्रार्थना करना। हाँ चलो।
महापुरुषों को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है कि मनुष्य का कल्याण न होने के कारण उसको नारकीय यातनाएं एवं अनेक तरह के जन्म मरण के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि वह जीव जिसको मनुष्य जन्म मिल गया वह अपना उद्धार कर ले, जन्म मरण से पिंड छुड़ा ले, भगवत प्राप्ति से वंचित न रहे। इसलिए महापुरुषों का विशेष प्रयत्न इस दिशा में होता है। श्रद्धे जयदयाल जी गोयंका भगवान से अधिकार प्राप्त पुरुष थे।
गोयंका जी महाराज के बारे में तो मालूम है ही, ज्यादातर लोगों भगवान के दर्शन हुए थे उनको, समझे ना? और तो मतलब इस पृथ्वी पर आए इस काम के लिए थे, बाद में मालूम होता है भाई गीता प्रेस की स्थापना उन्होंने करी गोयंका जी महाराज ने। तीन महापुरुष एक साथ ये हुए एक ही समय में, गोयंका जी महाराज, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, स्वामी जी अपन एक ही महापुरुष के उसमें आए संपर्क में। चलो।
श्रद्धे जयदयाल जी गोयंका भगवान से अधिकार प्राप्त पुरुष थे, ऐसी हमारी धारणा है। उनके दिन रात लगन लगी रहती थी कि लोग सत्संग में आए, सत्संग की बातें सुने और उन्हें काम में लाए। इस उद्देश्य से उनका सत्संग पर बड़ा जोर रहता था। वे स्वयं एक दिन में 8 घंटे तक सत्संग कराते थे।
ओ तुम्हारी का, एक दिन में
8 घंटे तक,
ओफो 8 घंटे तक,
8 घंटे तक सत्संग कराते थे।
अच्छा, और 8 घंटे तो बहुत ज्यादा। सत्संग कराते थे माने ये हुआ कि अब 8 घंटे बातचीत भी, बोलना भी, करना भी, अब 24 घंटे में 8 तो इसमें से निकाल दिए हैं। ओहो अच्छा भाई चलो।
और संतों को बुलाकर भी सत्संग कराते थे। वे कई स्थानों पर जाकर सत्संग कराते थे, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में 3-4 महीनों तक सत्संग का आयोजन रहता था।
अभी वो पेड़ है वहाँ जैसे, हाँ तुमने देखा ना, तुमने देखा?
टीन शेड भी है वो,
टीन शेड भी है
पूरा।
हाँ मैं भी गया था उसमें, वहाँ है अभी।
वे प्रवचन संग्रहित किया करते थे, नहीं सॉरी, वे प्रवचन संग्रहित किए गए थे। उनको भगवत कृपा से पुस्तक का रूप देने का विचार हुआ कि सब लोग उन प्रवचनों से लाभ ले सकें। हमें आशा है पाठक लोग इन्हें मनन पूर्वक पढ़ेंगे और अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और भगवान की प्राप्ति का आनंद मिले। प्रकाशक।
जैसा जैसा होना हो है। अब गोविंदका जी महाराज का तो शरीर छूट गया होगा, इसलिए पिताजी मुझसे ये कहा करते थे मेरे पिताजी कि भाई पोद्दार जी के पास चले दर्शन करने, तो नहीं जाना हुआ। स्वामी जी महाराज के भाई हुए मिलना, बातचीत करना। चलो पढ़ो।
श्री हरि। काम को भगवान की पूजा बनाए, ये हेडिंग है। यदि आचरण में लाया जाए तो एक दिन का व्याख्यान ही पर्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षों व्याख्यान सुनकर भी हम लोग वहीं के वहीं पड़े हैं, पड़े नहीं है। सुधार तो सभी का हुआ है पर लगता है मानो वहीं पड़े हैं। बात यह है कि हम लोग जो सुनते हैं पढ़ते हैं उसे कार्य में लाना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में झूठ कपट का त्याग करना चाहिए। प्राण भले ही चले जाएं पर झूठ कपट नहीं करेंगे। यदि कर्मयोग के अनुसार, फिर फुटनोट में है गीता जी का 18वें का
46वां,
जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हमारा व्यापार हो जाए तब तो फिर बात ही क्या है। झूठ कपट त्याग कर सत्य व्यवहार तो करना ही चाहिए। स्वार्थ को त्याग कर सबको भगवान समझते हुए व्यापार करना तो भगवान की पूजा है और उससे अति शीघ्र भगवान मिल सकते हैं। चने चबाकर निर्वाह कर लें पर पाप न करें। धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना चाहिए। इसी प्रकार ऋण की बात समझनी चाहिए। किसी का ऋण बाकी रह जाए, रह जाना पाप है। शास्त्र कहते हैं दान लेकर भी ऋण चुका सकते हैं। दान लेने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता पर ऋण बाकी रह जाए तो चुकाने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। जीते हुए ही मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा करनी चाहिए। ऋण दान से भी बुरा है। दान ब्राह्मण के लिए तो पाप नहीं है पर ऋण तो उसके लिए भी पाप है। वैश्य के लिए दान लेने की आज्ञा नहीं है। वैश्यों तथा क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए पर ऋण उससे भी बुरा वस्तु है। अतः दान लेकर भी ऋण चुकाया जा सकता है। दान लेने का विधान नहीं समझना चाहिए। यह बात तो केवल ऋण चुकाने के लिए है क्योंकि ऋण तो मरने के बाद भी चुकाना पड़ता है। पाप तो ईश्वर की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। निष्काम कर्म से भी ऋण का नाश नहीं होता, पाप हो जाता है। ऋण को तो चुकाने से ही मुक्ति मिलती है। पाप से भी बढ़कर ऋण बंधन का हेतु है। पाप तो हानिकर चीज है ही। वैश्य के लिए दान लेना धर्म नहीं अपितु अधर्म है।
जी अभी जो ऋण लेते हैं बैंक वगैरह में, बैंक सेवेंस है, तो ये नहीं चुकाता और वैसे भी जो मृत्यु हो जाए तो उसकी
चुकाना पड़ेगा, दुर्गति होगी।
इंस्टॉलमेंट होती है कई वर्षों की, बीच में कोई चला जाए।
देखो हाँ मैं समझ गया, मैं बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है नियत। नियत तो हमेशा होनी चाहिए चुकाने, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी घटना, मतलब ऐसी घटना ना घटे फिर तो जरूरी चुकाना है, चाहे बैंक हो चाहे व्यक्ति हो। एक ही बात है, बैंक हो चाहे व्यक्ति हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, समझे ना। ऋण तो ऋण है। किसी कारण से ऐसी घटना हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को चुकाना चाहिए।
बैंक वाले तो ले लेते हैं,
बैंक वाले तो खुद ले लेते हैं, तो उत्तराधिकारी से ले लेते हैं।
नहीं लेते लेते हैं, मैं कह रहा हूँ उनकी नियत होनी चाहिए चुकाने की। बैंक वाले लेते भी हैं, मॉर्गेज करते हैं, हाँ तो उत्तराधिकारी जो भी हैं उसका संतान वगैरह उनको चुकाना चाहिए पूरी लगन से। और हर सूरत ऋण ऋण बिल्कुल चुकाना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी बात है। ऋण पीछा नहीं छोड़ता। दो चीज मुश्किल है, उनमें भी ऋण ज्यादा है। एक अपराध, अपराध जो है वो भी पीछा नहीं छोड़ता, समय से चलता रहे, एक्शन रिएक्शन। किसी का हमने कुछ किया हानि, फिर वो अगले जन्म में या उसी जन्म में किसी जन्म में फिर वो आवे है हिसाब किताब। इसलिए किसी के प्रति कोई अपराध ना हो, ये और ऋण नहीं पीछा छोड़ता। अच्छा, इसलिए ऋण तो जरूर उत्तर आइए भी ठीक कह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी रख करके बैंक छोड़ेगा भी नहीं, ایک معاملے میں, حالانکہ وہ تو بالکل یاد کی بات تھی, کنی نے ऋण لیا بینک سے, پریوار کے کام کے لیے لیا, جو بھی تھا بزنس وغیرہ, ایکچوئل میں سارا کام ایک بھائی کر رہے تھے, انہوں نے لیا, اپنے لیے لیا, نام پریوار کا تھا, دوسرے بھائی کو تو کچھ مطلب ہی نہیں تھا اس دن سے نہ اس نے, لیکن سائن اس نے بھی کر دی بھائی پریوار کے لیے فیکٹری لگانا جو کچھ بھی کرنا, لیکن سارا ریڑھ بھی اس نے لیا, کام میں بھی اس نے سب, دوسرا تو پڑھ رہا تھا اسے پتا ہی کچھ نہیں, بڑے نے لیا بڑا اپنا سب کام میں جو بھی بزنس بزنس تھی. پھر ایسی استھتی آئی کہ الگ الگ ہو گئے بھائی, جس بھائی نے لیا تھا ऋण چکا نہیں سکا, اور فیکٹری ویکٹری میں نقصان جو بھی ہوا, اس کی نیت بھی خراب ہو گئی. ایسے آدمی اس سماج میں ہیں جو ऋण لیتے سمے ہی طے کر لیں کہ دینا تو ہے ہی نہیں شروع میں ہی, مطلب یہ ہے کہ ऋण لے میں اس لیے ہیں اگر دینا تو ہے نہیں. ہاں ایسے ہیں, بالکل ایسے بھی ہیں جو ऋण لے کر کے جشن مناوے پارٹی, پہلے دن جس دن مل جا پیسہ مل گیا 5,00,000 روپے, دینا ہے ہی نہیں تو 5,000 روپے کی 10,000 کی پارٹی کر دی, کیا بات ہوئی, دینا تو ہے ہی. خیر اس بھائی کی نیت بھی ویسی ہوگی شروع میں. خیر میں سنکھیپ میں یہ ہوا, بینک نے مقدمہ کر دیا, مقدمے میں پھر یہ بات آئی کہ بھائی ऋण دو واپس, جس بھائی نے لیا تھا اس نے اپنے سگنیچر ڈینائی کر دیے, میرے سگنیچر نہیں ہے, اب بینک مقدمہ لڑے گا. دوسرا بھائی سگنیچر اس کے تھے لیکن سگنیچر کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا, نہ پیسہ لیا, وہ بھائی صادق ہو گیا, میرے میں شردھا ہو گئی, یہ معاملہ لائے میرے پاس, بہت برسوں کی بات ہے, اس نے تو منع کر ہی دیا جس نے لیا تھا, اس میں میں سگنیچر نہیں ہے, مقدمہ لڑ جاؤ, اس بیچارے کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا, ایک پیسہ نہیں لیا اس نے, مطلب پتا ہی نہیں سر سائی سائن کرنے کا. میں نے اس سے پوچھا, میں کہا بتا بھائی, کہتے جی میں تو اس مارگ پہ چلنے کو چلوں گا جو آپ بتا رہے ہو. میں کہا تو اس مارگ پہ چلے گا تو بھائی اس مارگ کی خاص بات تو بھائی آگیا پالن ہے, اصلی بات تو باقی تو پڑھتے ہی رہے ہیں کہ ہاں. میں کہتا ایسا کر, تیرے سائن تو ہیں کہ ہاں, اور جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی ہو, چاہے بینک ایک سے لے لے, چاہے بینک دونوں سے لے لے, چاہے کسی سے بھی لے لے, یہ بینک کرپٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے بھی لے سکتے تھے, دونوں سے بھی مقدمہ. اس نے مجھے بتا دیا کہ میرا مجھے پتا ہی کچھ نہیں, اتنے لاکھوں کا لیا, تو سائن کر دیے, بھائی تھے اس وقت جوائنٹ فیملی میں. خیر بھگوان نے ایسی لیلا کری, ایسی کرپا کری, میں نے کہا اچھا تو تیرا پکا ارادہ ہے تو تو پہلا کام یہ کر, یہ سارا ऋण تو چکا دے ٹیسٹ پورا, کمپرومائز بھی کرے ہیں بینک, ہاں کرتے ہیں کمپرومائز کر کرا کر کے شاید 9,00,000 کے قریب ہوا, ان کے پاس آنا نہیں. میں کہا تو آگیا تو یہی ہے, کہاں کہاں سے لے لیوا کر کے کیسے کر کے, یہ بھی پکا ہی نکلا, اس نے جا کے 9,00,000 روپے دے دی بینک کو, مکت ہو گیا. اور اس نے میں نے کہہ دیا تھا, اس کے کچھ سمے بعد ایسی لیلا ہوئی جہاں جہاں سے ऋण وین لے کے کیسے کیسے کر کے اس نے بیچارے نے وہ پیسے دیے تھے بینک کو, وہ تو چکی گئے, پھر خوب پیسہ آن لگا اپنے آپ ایمانداری کا, اور دوسرے کے اوپر اتنا ऋण اور ہو گئے, اتنے ऋण ہو گئے, اب تو اس بات کو بہت ورشوں ہو گئے, लेकिन ऐसा चक्र चला कि इस समय लाखों या कितने करोड़ों आत्महत्या तक की नौबत हो रही, क्या करें, फलित दुर्गति हो रही, क्योंकि और भी ऋण लिया उनका नियम ये था देना। तो और ये तो फिर इनका तो बात ही दूसरी हो, लेकिन वो टेस्ट मामूली नहीं था, पैसे का मतलब नहीं, 9 लाख का जाकर ऋण देना जिन्हें कहाँ कहाँ से दे। चलो,
भजन के प्रताप से पाप नाश हो जाएगा, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। कुछ बात और भी है जिनसे ऋण मुक्त हुआ जा सकता है, पर लोग उसके सुनने के पात्र नहीं है, अतः वह नहीं बतलाई जाए। अन्यथा लोग ऋण चुकाने में प्रवृत्त नहीं रहेंगे।
वो तो कहेंगे इसी बात को पकड़ लो।
सबके मन में यही बात रहनी चाहिए कि ऋण तत्पर होकर चुकाना चाहिए। मोटा कपड़ा पहनना, भोजन में रूखा सूखा खाना, कष्ट सहकर भी पैसा बचाना और ऋण चुकाना चाहिए। ऋण से मुक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अपने आप को, लड़कों को, स्त्री को बेचकर ऋण चुका सकते हैं, कन्या को बेचकर भी सिर का ऋण चुका सकते हैं। कन्या सहमत हो, वर बूढ़ा न हो, वर में कोई दोष न हो, कन्या का चित्त खिन्न न हो, तो कन्या बेचकर भी ऋण चुका दो।
देखो कितना बड़ा भयंकर मामला है ऋण का। बहुत ज्यादा, बहुत
अधिकांश ले रखे हैं,
खूब ले रखे हैं, जिनके पास बहुत पैसा उन्होंने बहुत ले रखे हैं। भाई उसे जीवन खूब पैसा है, कार ऋण से खरीद दें क्योंकि उसमें वो मिले कुछ इनकम टैक्स में और सोचो। और ये परिपाटी सीखी है अमेरिका से, हमारी संस्कृति में ऋण लेने का नहीं था पहले, जब तक मजबूर ना हो जाए, और अमेरिका की दुर्गति हो ही गई इन दिनों में, बैंक फेल हो गए कितने।
स्त्री को बेचकर सती तत्व की रक्षा करते हुए दासी भाव से, जैसे हरिश्चंद्र ने बेच दिया, पुत्र को बेचकर सब तरह से ऋण चुका सकते हैं। हरिश्चंद्र शमशान घाट में अपनी स्त्री से आधा वस्त्र मांगते हैं, काटने को हथियार उठाया, भगवान प्रकट हो गए, बोले बस करो, तुमने धर्म को जीत लिया, बोलो मैं क्या सेवा करूं। हरिश्चंद्र सारे नगर को बैकुंठ में ले गए, एक व्यक्ति के धर्म पालन से सबका कल्याण हो गया। व्यापार में परिश्रम करें पर झूठ कपट न करें, लोभ त्याग दें, त्याग दो, त्यागात शांति अनंतरम, स्वार्थ का त्याग ध्यान से भी बढ़कर है। धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ व्यापार करना चाहिए, उसमें उदारता, दया भी रहनी चाहिए। मैं वैश्य हूँ, संसार के लिए व्यापार करता हूँ, खाने को न मिले तो सिसक कर मर जाए, पर पाप न करे, धर्म के पालन में मर जाने से भी कल्याण है। स्वधर्मे निधर्म श्रेया, पर धर्मो भयावह।
और ये पैराग्राफ करना।
लोभ किसको कहते हैं?
लोभ,
क्योंकि इसमें अभी तो कहा मोटा पहनो, ये
हाँ,
लोभ क्या है? लोभ वही तो है कि कम खर्च करना।
नहीं, लोभ है पैसे के प्रति आसक्ति, कम और ज्यादा का सवाल नहीं है। कम और ज्यादा तो अपनी परिस्थिति और अपनी आवश्यकता, उसके हिसाब से चलेगा। परिस्थिति किसकी क्या है, आयु क्या है, कैसी स्थिति है। हाँ, रहना ये चाहिए कि सिंपल से सिंपल रहा जाए, अपने ऊपर कम से कम खर्च करा जाए, जिसको कहते हैं मोटा खाना मोटा पहनना, हमारी संस्कृति यही है। लेकिन लोभ है आसक्ति पैसे के प्रति, और इसका संबंध कितना धन है कितना नहीं, इससे कोई नहीं है, कोई धन संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं। अरबापति खूब लोभी होते हैं, बहुत ज्यादातर लोभी होते हैं, धनाढ्य लोग ज्यादातर लोभी होते हैं, लोभ के वश तो ज्यादातर कोशिश ही करिए धनी बनने की, समझे ना, लोभ की वस्ती पीस लिए और वो कोई जीवन का एम थोड़ा ही है, पता नहीं किस चीज में अटक जा मन। हैदराबाद का निजाम उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, अंग्रेज लोग आया करते थे सिगार पी करके जो रखा रहे है हाँ एस्ट्रे उसमें छोड़ जाते, वो आधा उठा के ले आवे उसमें 36 साल उसने एक अचकन पहरी,
36
हाँ 36 ऐसे ऐसे गज भी हों। ये रजनीश जी के उसमें प्रवचनों में खूब, रजनीश ने दुनिया भर के खाके कैच रखे हैं और एग्जैक्ट बोल रहे हैं वो, अयू भी बता रहे हैं, तो बहुत ज्ञान का भंडार थे ना अपने जमाने में, वहां है
ये 36 साल
तक रिकॉर्ड आ गया, लिखने वाले माने नहीं क्या ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानी बहुत व्यापारी है, इंडिया के सिंधी है काफी, ये हमारा जो बदनला है अमेरिका में आजकल ये भी कुछ दिन रहा है वहां, इसने बात बताई कि वहां बहुत धनाढ्य अफ्रीकन सामान लेने आवे लेडीज, तो एक बीमारी हो वो शॉपलिफ्टिंग इज अ डिजीज, दे कम फॉर परचेजिंग समथिंग दे आर वेरी वेल्दी बट दे वांट टू स्टील हैंडकरचीफ समथिंग एल्स टेंडेंस, दे आर वेरी रिच, बहुत रिच है, बट दे हैव टेंडेंसी, बट दोज बिजनेसमैन ऑन हूज शॉप्स दे कम दे इंटेंशनली अलाउ देम टू स्टील, दे गेट बिज इन सम अदर थिंग्स फॉर दैट शी मे स्टील बिकॉज शी विल बी हैप्पी एंड दे विल अर्न फ्रॉम हर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, चोरी कर लेंगे थोड़ा सा 5 रुमाल 4 रुमाल जेब में रख ली फिर कुछ भी भाव लो। ये संसार विचित्र है।